लुका की मार्फत इंजील बाब 22। बे खमीरी रोटी की ईद यानी फसह की ईद करीब आ गई थी। रहनुमा इमाम और शरीयत उलमा ईसा को कत्ल करने का कोई मौजू मौका ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो अवाम के रद्द अमल से डरते थे। उस वक्त इबलीस यहूदा इस्करियोती में समा गया, जो 12 रसूलों में से था। अब वो रहनुमा इमामों और बैतुल मकद्दस के पहरेदारों के अफसरों से मिला और उनसे बात करने लगा कि वो ईसा को किस तरह उनके हवाले कर सकेगा। वो खुश हुए और उसे पैसे देने पर मुत्तफिक हुए। यहूदा रजामंद हुआ। अब से वो इस तलाश में रहा कि ईसा को ऐसे मौके पर उनके हवाले करे जब हुजूम उसके पास न हो। बेखमीरी रोटी की ईद आई जब फसह के लेले को कुर्बान करना था। ईसा ने पतरस और यूहन्ना को आगे भेजकर हिदायत की, जाओ हमारे लिए फसह का खाना तैयार करो ताकि हम जाकर उसे खा सकें। उन्होंने पूछा, हम उसे कहाँ तैयार करें? उसने जवाब दिया, जब तुम शहर में दाखिल होगे तो तुम्हारी मुलाकात एक आदमी से होगी जो पानी का घड़ा उठाए चल रहा होगा। उसके पीछे चलकर उस घर में दाखिल हो जाओ जिसमें वो जाएगा। वहां के मालिक से कहना, उस्ताद आपसे पूछते हैं कि वो कमरा कहाँ है जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह का खाना खाऊं। वो तुमको दूसरी मंजिल पर एक बड़ा और सजा हुआ कमरा दिखाएगा, फसह का खाना वहीं तैयार करना। दोनों चले गए तो सब कुछ वैसा ही पाया जैसा ईसा ने उन्हें बताया था। फिर उन्होंने फसह का खाना तैयार किया। मुकर्रा वक्त पर ईसा अपने शागिर्दों के साथ खाने के लिए बैठ गया। उसने उनसे कहा, मेरी शदीद आरजू थी कि दुख उठाने से पहले तुम्हारे साथ मिलकर फसह का ये खाना खाऊं, क्योंकि मैं तुमको बताता हूं कि उस वक्त तक इस खाने में शरीक नहीं होऊंगा जब तक इसका मकसद अल्लाह की बादशाही में पूरा न हो गया हो। फिर उसने मैं का प्याला लेकर शुक्रगुजारी की, दुआ की और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो। मैं तुमको बताता हूं कि अब से मैं अंगूर का रस नहीं पीऊंगा, क्योंकि अगली दफा इसे अल्लाह की बादशाही आने पर पीऊंगा। फिर उसने रोटी लेकर शुक्रगुजारी की, दुआ की और उसे टुकड़े करके उन्हें दिया। उसने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मुझे याद करने के लिए यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लेकर कहा, मैं का ये प्याला वो नया अहद है जो मेरे खून के जरिए कायम किया जाता है, वो खून जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। लेकिन जिस शख्स का हाथ मेरे साथ खाना खाने में शरीक है वो मुझे दुश्मन के हवाले कर देगा। इब्ने आदम तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कूच कर जाएगा, लेकिन उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से उसे दुश्मन के हवाले कर दिया जाएगा। ये सुनकर शागिर्द एक दूसरे से बहस करने लगे कि हम में से ये कौन हो सकता है जो इस किस्म की हरकत करे। फिर एक और बात भी छिड़ गई। वो एक दूसरे से बहस करने लगे कि हम में से कौन सबसे बड़ा समझा जाए। लेकिन ईसा ने उनसे कहा, गैर यहूदी कौमों में बादशाह वही हैं जो दूसरों पर हुकूमत करते हैं, और अख्तियार वाले वही हैं जिन्हें मोहसिन का लकब दिया जाता है। लेकिन तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बजाय जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटे लड़के के मानिंद हो, और जो रहनुमाई करता है वो नौकर जैसा हो। क्योंकि आम तौर पर कौन ज्यादा बड़ा होता है, जो खाने के लिए बैठा है या वो जो लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता है? क्या वो नहीं जो खाने के लिए बैठा है? बेशक, लेकिन मैं खिदमत करने वाले की हैसियत से ही तुम्हारे दरमियान हूँ। देखो, तुम वही हो जो मेरी तमाम आजमाइशों के दौरान मेरे साथ रहे हो। चुनांचे मैं तुमको बादशाही अता करता हूँ। जिस तरह बाप ने मुझे भी बादशाही अता की है। तुम मेरी बादशाही में मेरी मेज पर बैठकर मेरे साथ खाओ और पियोगे, और तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। शमौन शमौन, इबलीस ने तुम लोगों को गंदम की तरह फेंकने का मुतालबा किया है, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा ईमान जाता न रहे, और जब तू मुड़कर वापस आए तो उस वक्त अपने भाइयों को मजबूत करना। पतरस ने जवाब दिया, खुदावंद, मैं तो आपके साथ जेल में भी जाने के लिए बल्कि मरने को तैयार हूं। ईसा ने कहा, पतरस, मैं तुझे बताता हूं कि कल सुबह मुर्ग के बाग देने से पहले पहले तू 3 बार मुझे जानने से इनकार कर चुका होगा। अब बटुए, बैग और तलवार की जरूरत है। फिर उसने उनसे पूछा, जब मैंने तुमको बटुए, सामान के लिए बैग और जूतों के बगैर भेज दिया तो क्या तुम किसी भी चीज से महरूम रहे? उन्होंने जवाब दिया, किसी से नहीं। उसने कहा, लेकिन अब जिसके पास बटुआ या बैग हो वो उसे साथ ले जाए, बल्कि जिसके पास तलवार ना हो वो अपनी चादर बेचकर तलवार खरीद ले। कलामे मुकद्दस में लिखा है, उसे मुजरिमों में शुमार किया गया, और मैं तुमको बताता हूँ, लाजिम है कि ये बात मुझ में पूरी हो जाए, क्योंकि जो कुछ मेरे बारे में लिखा है उसे पूरा ही होना है। उन्होंने कहा, खुदावन, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने कहा, बस काफी है। फिर वो शहर से निकलकर मामूल के मुताबिक जैतून के पहाड़ की तरफ चल दिया। उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। वहां पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। फिर वो उन्हें छोड़कर कुछ आगे निकला, तकरीबन इतने फासले पर जितनी दूर तक पत्थर फेंका जा सकता है। वहां वो झुककर दुआ करने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उस वक्त एक फरिश्ते ने आसमान पर से उस पर जाहिर होकर उसको तकवियत दी। वो सख्त परेशान होकर ज्यादा दिलसोजी से दुआ करने लगा, साथ साथ उसका पसीना खून की बूंदों की तरह जमीन पर टपकने लगा। जब वो दुआ से फारिग होकर खड़ा हुआ और शागिर्दों के पास वापस आया तो देखा कि वो गम के मारे सो गए हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों सो रहे हो? उठकर दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में न पड़ो। वो अभी ये बात कर ही रहा था कि एक हुजूम आ पहुंचा जिसके आगे आगे यहूदा चल रहा था। वो ईसा को बोसा देने के लिए उसके पास आया, लेकिन उसने कहा, यहूदा, क्या तू इब्ने आदम को बोसा देकर दुश्मन के हवाले कर रहा है? जब उसके साथियों ने भांप लिया कि अब क्या होने वाला है तो उन्होंने कहा, खुदावन, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने अपनी तलवार से इमाम आजम के गुलाम का दहिना कान उड़ा दिया, लेकिन ईसा ने कहा, बस कर। उसने गुलाम का कान छूकर उसे शिफा दी। फिर वो उन रहनुमा इमामों, बैतुल मकद्दस के पहरेदारों के अफसरों और बुजुर्गों से मुखातिब हुआ जो उसके पास आए थे, क्या मैं डाकू हूं जो तुम तलवारें और लाठियां लिए मेरे खिलाफ निकले हो? मैं तो रोजाना बैतुल मकद्दस में तुम्हारे पास था, मगर तुमने वहां मुझे हाथ नहीं लगाया, लेकिन अब ये तुम्हारा वक्त है, वो वक्त जब तारीकी हुकूमत करती है। फिर वो उसे गिरफ्तार करके इमाम आजम के घर ले गए। पतरस कुछ फासले पर उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। लोग सहन में आग जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठ गए। पतरस भी उनके दरमियान बैठ गया। किसी नौकरानी ने उसे वहां आग के पास बैठे हुए देखा। उसने उसे घूर कर कहा, ये भी उसके साथ था, लेकिन उसने इनकार किया, खातून, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद किसी आदमी ने उसे देखा और कहा, तुम भी उनमें से हो। लेकिन पतरस ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं हूं। तकरीबन एक घंटा गुजर गया तो किसी और ने इसरार करके कहा, ये आदमी यकीनन उसके साथ था, क्योंकि ये भी गलील का रहने वाला है। लेकिन पतरस ने जवाब दिया, यार, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो। वो अभी बात कर ही रहा था कि अचानक मुर्ग की बांग सुनाई दी। खुदावंद ने मुड़कर पतरस पर नजर डाली। फिर पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने उससे कही थी कि कल सुबह मुर्ग के बांग देने से पहले पहले तो 3 बार मुझे जानने से इनकार कर चुका होगा। पतरस वहां से निकलकर टूटे दिल से खूब रोया। पहरेदार ईसा का मजाक उड़ाने और उसकी पिटाई करने लगे। उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर पूछा, नबुवत कर कि किसने तुझे मारा। इस तरह की और बहुत सी बातों से वो उसकी बेइज्जती करते रहे। जब दिन चढ़ा तो रहनुमा इमामों और शरीयत के उलमा पर मुश्तमिल कौम की मजलिस ने जमा होकर उसे यहूदी अदालत आलिया में पेश किया। उन्होंने कहा, अगर तू मसीह है तो हमें बता। ईसा ने जवाब दिया, अगर मैं तुमको बताऊं तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, और अगर तुमसे पूछूं तो तुम जवाब नहीं दोगे। लेकिन अब से इब्ने आदम अल्लाह ताला के दहिने हाथ बैठा होगा। सबने पूछा, तो फिर क्या तू अल्लाह का फर्जंद है? उसने जवाब दिया, जी, तुम खुद कहते हो। इस पर उन्होंने कहा, अब हमें किसी और गवाही की क्या जरूरत रही, क्योंकि हमने ये बात उसके अपने मुंह से सुन ली है।